हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 23 एंड 24। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतो मानसराज हंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्त्वा, स्मरतव्यं सततं विष्णु, विस्मर्तव्यो न चातुषे, सर्ववित्थि निषेधास्यो एतयोरेव किंकर। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गीनया कल्पिता श्रीमत् भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पोमर्थो महा, श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा, पीतांबर तरुण बिंब फल धरोष्टा, पुरेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा, कृष्णात्तरं किमपि तत्व अहं न जानि, करारिविंदे न पदारिविंदं, मुखारिविंदे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटीशयानम्, बालं मुकुंदं मनसा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जी हवे पिबस्वा मृतुमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेसि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्प्रवर्तेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाया मुदीरये नष्टप्रायेषु अभक्तेषु नित्यं भागवत सेवनं भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथ राज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अध्याय 16 जिसका शीर्षक है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया श्लोक संख्या 23 एंड 24। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। धर्म पृथ्वी से अर्थात वेद गौ से प्रश्न पूछ रहे हैं। वे कहते हैं यद्वांबते भूरि भारावतार कृतावतारस्य हरे धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि यत्वांबते भूरि भारावतार कृतावतारस्य हरे धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि यद्वांबते भूरि भारावतार कृतावतारस्य हरे धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि शब्दात् यद्वांबते भूरि भारावतार यद्वा या हो सकता है अम्ब हे माता ते तुम्हारा भूरि भारी भारा यानी बोझा अवतारा बोझा घटाना कृत किया गया अवतारस्य अवतारी हरेर भगवान श्री कृष्ण का
यानी भगवान श्री कृष्ण का अवतार आपके इस भारी बोझ को उतारने के लिए हुआ था। धरित्री हे पृथ्वी, अंतहेतस दृष्टि से ओझल भगवान का स्मरति सोचते हुए विसृष्टा सब कुछ किया गया कर्माणि कर्म निर्वाणी यानी मोक्ष विलंबितानि जो निहित हो। अनुवाद, धर्म रूपी बेल माता पृथ्वी से पूछ रहे हैं, हे माता पृथ्वी, भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही तो श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनसे विहीन हो गई हैं, शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे, कृपया ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के इन शब्दों को श्रवण कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के कार्य में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वे किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक अच्छे लगने वाले हैं। श्रील जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यहाँ पर प्रयुक्त शब्द निर्वाण विलंबितानि का अर्थ मोक्ष के महत्व को कम करने वाला है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वे पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतरित होते हैं। मनुष्य ऐसे कार्यों को केवल स्मरण करके ही निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मारकर भगवान का सानिध्य पाने और वहां उनकी आनंदमयी सेवा में लगे रहने के लिए उनके दिव्य धाम में पहुंच सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं गुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण के इस पृथ्वी लोक से जब वो हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे थे ना, तब उनसे बहुत ही सुंदर प्रार्थना करती हैं। वे कहती हैं, नेयम शोभिष्यति तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। हे गदाधर भगवान श्री कृष्ण, जब उस समय आप हमारे साथ हैं, आप हमारे राज्य में, आपकी हर जगह चरण चिन्ह त्वत्पदय अंकिता भानि, आपके चरण चिन्ह जगह जगह पर जहाँ से आप चल रहे हो वहाँ पर हो रहे हैं, जिसके कारण यह राज्य है वो बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन आपके चले जाने से ऐसा नहीं रहेगा, ये बहुत ही क्रूप हो जाएगा। अर्थात यह संसार, यह पृथ्वी यदि सुंदर दिखती है तो उसका एक ही कारण है कि इस पृथ्वी पर भगवान की चरण चिन्ह है। यहाँ पर बेल रूपी जो धर्म है वो पृथ्वी से पूछ रहे हैं, यद्वाम्बते भूरि भारावतार, क्योंकि आपको याद है, आप जानते हो कि आपके ऊपर से जो भार उतारने के लिए भगवान कृत्वातारस्य हरीर धरित्री के हरि भगवान श्री कृष्ण ने आपके सिर से अपराधियों का बोझ उतारने के लिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में हैं, तो फिर वो तो पृथ्वी पर से अधर्मियों का विनाश करेंगे ही। तो पृथ्वी बहुत आनंद से थी, जब तक भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में थे, उनके चरण चिन्ह जब वो पृथ्वी पर रखते थे तो पृथ्वी इतनी प्रफुल्लित होती थी, इतनी आनंदित। उनका वो ये पूरा जो धरती है ना, वो पृथ्वी का ही शरीर है। तो जब भगवान के चरण उस पृथ्वी पर पड़ते थे तो वो गदगद हो जाती थी, उनके रोंगटे खड़े होने लगते थे। तो वे जो वृक्ष हैं, मतलब उनके पास जो कुछ था, पृथ्वी जो कुछ अपने जीवों को दे सकती थी वो लुटा रही थी। वृक्ष जो था वो फलों से भरे हुए होते थे, जो पर्वत थे वो खनिजों से मिनरल से इतने भरे हुए होते थे, जो नदियां थी वो मीठा पानी इतना सुंदर स्वस्थ जल देती थी, जो खेत हैं उनमें इतना अन्न प्रचुर मात्रा में होता था कि जीवों को जो है ना वो किसी भी परिश्रम की आवश्यकता ही नहीं होती थी। पृथ्वी इतना आनंद का अनुभव कर रही थी, क्योंकि पृथ्वी जब आनंदित होती है ना तो फिर वो अपनी सारी सामग्री लुटाने लगती है। तो जब भगवान इस भौतिक धरातल पर होते हैं तो पृथ्वी बहुत प्रफुल्लित होती है, बहुत आनंदित होती है, क्योंकि जब भगवान के चरण इस पृथ्वी को स्पर्श कर रहे होते हैं तो पृथ्वी के आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। इसलिए हम देखते हैं, एक समय होता था जब किसी को भी भूखे को पैसों पे खाना नहीं दिया जाता था, बस लोग जो है वो दान करते थे, जो वानप्रस्थ लोग होते थे वो निकल जाते थे घर से, वो अपने लिए कुछ ऐसे सोचते नहीं थे कहाँ खाऊंगा, बस कहीं साइड में सड़कों पर लोग खिला देते थे और धर्मशालाएं बनी होती थी, और इस तरह से लोगों को इन छोटी छोटी चीजों के लिए, खाने के लिए स्पेशली कुछ भी दुख मतलब ऐसा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती थी, वो तो स्वतः कोई भी खिला देता था। मनुष्यों को तो छोड़ो, जानवरों को भी कभी खाने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता था। तो फिर वो समय जो था, क्योंकि पृथ्वी इतना अनाज देती थी, इतना कुछ होता था, इतना कम भाव में मिलता था कि उनको लगता ही नहीं था कि इसका भी दाम देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता था कि पानी जो होता था, पानी वो एक बार क्या हुआ, महाराज श्री बता रहे थे कि हम लोग है ना छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, छोटे से थे, तो एक हम लोग खेल रहे थे, गेम खेल ली, और फिर जब कैंटीन में कुछ लेने के लिए गए तो पानी पिलाया हमें पहले, पानी जब हमने बोला पानी पिलाओ तो पिलाया, और फिर बोला पानी के सब पांच पांच पैसे दें। तो इतना हैरानी हुई कि पानी भी पैसों पे बिकेगा क्या, तो मतलब कभी पहले ये सोचा ही नहीं जाता था कि पानी पैसे पर बिकेगा, क्योंकि पानी और ये अनाज और ये पानी ये सब इतना आसानी से मिलता था कि उसके लिए धन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन आज का जीव जो है वो बगैर पैसे के पानी का गिलास भी पी नहीं सकता है ना, पानी उसको बगैर पैसे के नहीं मिलता, अनाज उसको बगैर पैसे के, क्योंकि पृथ्वी जो है वो इतना दुखी है कि वो प्रचुर मात्रा में अन्न नहीं दे रही है, और ये जो नदियां हैं वो इतना शीतल जल प्रदान नहीं कर रही, और उसका कारण क्या है, अंतरहितस्य का मतलब है दृष्टि से ओझल भगवान। अब क्योंकि पृथ्वी से अपने अवतार को समेट के चले गए हैं, इसलिए अब पृथ्वी अब सुशोभित नहीं है। इसीलिए कुंती महारानी भगवान को कहती है, नायम शोभिष्यते तत्र यथे दानिम, आपके बगैर तो यह पृथ्वी उजड़ जाएगी, वीरान हो जाएगी, आप जब चले जाओगे तो हस्तिनापुर की शोभा समाप्त तो हो जाएगी। वास्तव में भक्तों, कृष्ण यदि इस संसार में नहीं है तो ये सारा संसार मृतिक देह के समान है। जिस प्रकार देह से जब आत्मा चली जाती है तो उसको स्पर्श करने की इच्छा नहीं होती है, कृष्ण सबकी आत्मा के आत्मा है, कृष्ण परमात्मा है, और आत्मा तब सुखी होती है जब कृष्ण के साथ उसका संपर्क होता है। जैसे जब आत्मा चला जाता है तो शरीर को कोई देखना नहीं चाहता, चाहे वो कितना ही सुंदर शरीर क्यों ना हो, चाहे वो कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन वो अब किसी काम का नहीं रह जाता जब उसके अंदर आत्मा नहीं होती है। उसी प्रकार जब आत्मा से भगवान को विलग कर दिया जाता है, आत्मा से कृष्ण को अलग कर दिया जाता है, आत्मा यदि चाहे कितनी ही अच्छे शरीर में रहे, कितना ही वो शरीर ज्ञानी हो, कितना ही इस भौतिक जगत के दृष्टिकोण से उसका सौभाग्य हो, परंतु यदि वो कृष्ण का भक्त नहीं है तो फिर वो भगवत भक्तिहीनस्य जाति शात्र दपह जपह तपह अप्राणस्य इव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। कि ये सब चाहे अच्छा अच्छी उच्च जाति हो, बहुत ज्यादा ज्ञान हो, जप हो, तप हो, लेकिन यदि वो भगवत भक्ति से हीन है तो वो जीव मंडनम लोकरंजनम, जिस प्रकार से एक मृतक देह पे बहुत सारे आभूषण सजा दिए जाए, अच्छे से अच्छे ब्यूटी पार्लर से उसको तैयार कर दिया जाए, लेकिन क्या लाभ, उसका कोई लाभ नहीं क्योंकि उसके अंदर प्राण नहीं है। उसी तरह उस जीव का कोई उसकी सुंदरता, उसका ज्ञान किसी काम का नहीं है यदि वो कृष्ण का भक्त नहीं है। इसलिए पृथ्वी की दुर्दशा इसीलिए है, आज पृथ्वी इसीलिए रो रही है, दुखी है, क्योंकि अब भगवान उसके ऊपर अपने चरण नहीं रख रहे हैं। वास्तव में जब भगवान इस भौतिक धरती पर दृष्टिपात करते हैं तो वृक्ष फलों से लद जाते हैं, समुद्र मोती उगलने लगते हैं, नदियों में उफान आने लगता है, सारी प्राकृत वस्तुएं आनंदित हो जाती हैं, परंतु जिस प्रकार आत्मा के बगैर शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार कृष्ण के बिना यही दशा है संसार की। जैसे जब पावर हाउस से बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है तो चाहे आप कुछ भी कोशिश करो, आपके घर में लाइट नहीं जलेगी क्योंकि पावर हाउस से उसका कनेक्शन कट जाता है। उसी तरह से जब आत्मा का कनेक्शन भगवान से काट दिया जाता है, जब आत्मा भगवान से विलग कर दी जाती है, तब उसके अंदर कभी आनंद आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए बेल पृथ्वी माता से कहते हैं, यद्वाम्बते भूरी भारावतार कृतावतारस्य हरे धरित्री, के वह भगवान जो भगवान श्री कृष्ण जो आपका बोझ उतारने के लिए इस भौतिक जगत पर अवतरित हुए थे, अंतरहितस्य स्मरति विसृष्ट, आप उनको स्मरण करके दुखी हो रही हो, आप उनको उनकी स्मरण के कारण आप, क्योंकि आज वो अंतरहित हो गए, आज वो यहाँ से चले गए हैं, इसलिए आप दुखी हो रही हैं। क्योंकि जब भगवान के चरण कमल इस भौतिक जगत में होते हैं तो पृथ्वी बहुत समृद्ध होती है, हर एक वस्तु जो है वो आनंद से प्रफुल्लित होते हैं, लेकिन आज पृथ्वी की दशा को देखकर आज धर्म रूपी बेल जो है वो पृथ्वी को सांत्वना दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, कर्माणि निर्वाण विलंबितानि, आप दुखी मत हो माते, भगवान ने आपके इस पृथ्वी पर जब वो अवतरित हुए थे उन्होंने जो कार्य किए थे वो इतने दिव्य हैं कि केवल यदि उन कर्मों का कोई स्मरण कर लेता है, केवल उनको यदि स्मरण कर लेना कोई व्यक्ति, तो मुक्ति निर्वाण जो है वो तो उसके द्वार पर हाथ बांध कर खड़ी रह जाती है कि आप भगवान को स्मरण कर रहे हो, भगवान के कर्मों को स्मरण कर रहे हो, मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए आई हूँ, परंतु वो इस निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मारकर भगवान का सानिध्य पाने और वहाँ उनकी आनंदमय सेवा में लगे रहने के लिए उनके दिव्य धाम में पहुँच सकता है। उसे मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहती है, केवल भगवान ने जो तुम्हारे यहाँ भौतिक जगत पे आकर जो कार्यकला किए हैं, इसीलिए ये पृथ्वी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। वास्तव में इतना बड़ा सौभाग्य और किसी का भी हो नहीं सकता। जितने भी लोग हैं ना ब्रह्मांड में, केवल पृथ्वी को यह सौभाग्य प्राप्त है कि भगवान यहाँ पर अवतरित होते हैं। भगवान अपने चरण इस पृथ्वी पर, जितना टाइम भगवान इस जगत में होते हैं, वो पृथ्वी से दूर कभी नहीं होते। वो सदैव पृथ्वी के साथ अपने चरण पृथ्वी पर रखते हैं। कभी ग्वालों के साथ पृथ्वी के ऊपर खेलते हैं, कभी तो उस पृथ्वी के माटी को खाते हैं। कितना भगवान पृथ्वी के ऊपर कितनी कृपा करते हैं। वास्तव में पृथ्वी का सौभाग्य जो है ना, वो सबसे बड़ा है। अपनी माता के साथ भी भगवान इतना नहीं रहते, अपनी सखाओं के साथ भी इतना समय नहीं रहते जितना वो पृथ्वी को आनंद प्रदान करते। जब भगवान इस भौतिक जगत में होते हैं ना, तो देवता गण भी आते हैं पृथ्वी की सराहना करने के लिए। देवता पृथ्वी से कहते हैं, पृथ्वी हे भू देवी, मां भू देवी को मिला अति दुर्लभ सम्मान, नर बन कर आए यहां नारायण भगवान। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पृथ्वी की आराधना करते हैं। वे कहते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रा सोत्सवा वृंदारण्य मुदार पाणी रमणा तत्रापि गो वरधना राधा कुंडमिहा पिगो कुलपति प्रेमामृता लावना गुर्यादस्य वीरा जतो गिरितटे सेवां विवे की न कह। वे कहते हैं, ये पृथ्वी तो वैकुंठ से कई अधिक भाग्यवान है, क्योंकि वैकुंठ में भगवान कभी बाल रूप में जन्म नहीं लेते। वैकुंठ में कभी भगवान जो है वो आकर अपने मित्रों के साथ, अपने गोपियों के साथ आकर इस तरह से रास लीला नहीं खेलते। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, ये जो पृथ्वी के ऊपर जो मधुपुरी, ये जो वृंदावन है, मथुरा है, वो तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। मथुरा नाम का पवित्र स्थान जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहां पर प्रकट हुए हैं। मथुरा पुरी से भी अधिक श्रेष्ठ क्या है? वे कहते हैं, वृंदावर्णीय मुदारम पाणी रमणा, जो वृंदावन का दिव्य वन है वो तो मथुरा से भी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पर तत्रापि रासोसयात, क्योंकि वहां पर भगवान ने रास लीला की। और वृंदावन के वन से भी अधिक श्रेष्ठ क्या है? गोवर्धन है, क्योंकि उस गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ पे उठाया और यह उनकी विविध प्रेममय लीलाओं का स्थल रहा है। इन सबों में परम श्रेष्ठ तो राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तो ये सब, चाहे वृंदावन हो या मथुरा हो या राधा कुंड हो, ये सब पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी जो है वो वास्तव में वैकुंठ लोकों से कई अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पर पृथ्वी को बेल रूपी धर्म सांत्वना दे रहे हैं कि आप तो कितनी श्रेष्ठ हो, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही भगवान इस भौतिक जगत से चले गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो वहां पर कार्य जो किए थे वो सारे इतने दिव्य हैं कि केवल उन कार्यों को स्मरण करके ही जीवों को
जीवों को मुक्ति से भी अधिक निर्वाण विलंब बितानी। निर्वाण तो कुछ भी नहीं है, उनको भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये सिर्फ केवल आपकी मान्यता है, क्योंकि साक्षात परम पुरुष भगवान आपके ऊपर आए हैं और आपको कृतार्थ किया है। आगे वे कहते हैं, इदं मम चक्ष्वतवाधिमूलम् वसुंधरेण विकर्षितासि कालेन वाते मलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमम्बसो भग्यम्। इदं मम चक्ष्वतावाधिमूलम् वसुंधरेण विकर्षितासि कालेन वाते मलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमम्ब सौभगम्। इदं मम चक्ष्वतावाधिमूलम् वसुंधरेण विकर्षितानि वसुंधरेण विकर्षितासि कालेन वाति बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किम् हृतमं भसौभगम्। शब्दार्थ, इदं मम चाक्ष्व, इदं मतलब यह, मम यानी मुझको, च अक्ष्व बताओ, तव आदि मूलम तुम्हारे, तव मानी तुम्हारे, दुख का आदि मूलम यानी जो जड़ है वो बताओ, वसुंधरे हे समस्त धन की खान, ये न जिससे विकर्षिता से इतनी दुर्बल हो गई हो, काले नवा समय के प्रभाव से, अथवा ते बलिना तुम्हारा, बलिनाम अर्थात अत्यंत ही शक्तिशाली से, बलियसा अधिक शक्तिशाली से, सुर अर्चितम देवताओं द्वारा वंदनीय, किम हृतम अम्ब क्या छीन लिया गया, किम मना क्या, हृतम यानी छीन लिया गया, अम्ब हे माता सौभाग्यम आपका सौभाग्य। अनुवाद, हे माता आप सारे धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताइए जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत ही बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान की कृपा से प्रत्येक लोक पूर्णतः सज्जित रूप में सृजित होता है, अतएव यह पृथ्वी अपने निवासियों के पालन हेतु आवश्यक संपत्ति से पूर्णतया सज्जित ही नहीं, अपितु जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तो सारी पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से समृद्ध हो जाती है, जिससे स्वर्ग के वासी भी बड़े प्यार से इसकी पूजा करते हैं। लेकिन भगवान की इच्छा से सारी पृथ्वी तुरंत बदल जाती है, वे अपनी इच्छा अनुसार इसे बना बिगाड़ सकते हैं। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आत्मनिर्भर है या भगवान से स्वतंत्र है। शिला प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर बेल जो है वो पृथ्वी को कहते हैं वसुंधरे। वसुंधरे का मतलब होता है हे समस्त धन की खान, यानी जो कुछ भी जीव को चाहिए वो जीव पृथ्वी से प्राप्त कर सकता है। पृथ्वी पूर्ण है क्योंकि भगवान ने उसे बनाया है। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, भगवान स्वयं भी पूर्ण है और वो जो वस्तु को निर्माण करते वो भी पूर्ण है।
पृथ्वी के अंदर किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। जीव यदि अपने कर्तव्यों को, यदि शास्त्र में दिए हुए विधि विधानों को सही तरह से पालन करे तो पृथ्वी उसे प्रचुर मात्रा में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान कर सकती है। पृथ्वी के पास धन, पृथ्वी के पास जो खनिज है, मिनरल्स है, अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, और जो पशुओं के अंदर दूध है, ये सब इतना पर्याप्त मात्रा में है कि सारे जीव यदि सही तरह से वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, सही तरह से शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करें, तो जीव को अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है। जीव को अपने जीवित रहने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़े। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के अपने बच्चों को दूर दूर जगहों पर भेजकर, अलग अलग कंट्रीज में भेजकर अपने को दुखी करने की जरूरत ही नहीं है। आज का जीव जो है वो शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। शास्त्र के अनुसार जी जो मनुष्य देह मिला है ना, वो क्यों मिला है? भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो भगवत प्राप्ति करने के लिए आपको अपने जीवन को यदि संभाल के रखना है, जीवन का यदि आपको पालन करना है, तो उसके लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उसके लिए तो आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र ने कह दिया कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवे तयावता। कामना केवल इतनी करनी है कि तुम जी सको, और जीने का क्या कारण है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जियो इसलिए कि तुम भगवान की प्राप्ति कर सको। तो उसके लिए तो भगवान ने पृथ्वी को एकदम संपन्न बनाया है। उसके लिए जीव को सुबह से लेकर रात तक गधों की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको कुछ ऐसा कार्य करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास भगवान को स्मरण करने के लिए समय न मिले। उसके लिए आपको अपने आप को इतना व्यस्त करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान के पवित्र शब्दों को श्रवण करने का। आज जीव की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, बूढ़े हो जाते हैं तब तक वो भगवत गीता तक नहीं पढ़ सकते। क्या शास्त्रों के ऊपर वो चलेंगे जिन्होंने अभी तक कोई शास्त्र पढ़ा तक नहीं है? अभी हमारी आधे से ज्यादा जिंदगी गुजर जाती है और हमें ये भी पता नहीं होता है कि शास्त्रों में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। भागवतम में भगवान की कौन कौन सी दिव्य लीलाओं, कौन कौन से दिव्य रहस्य हैं? वो इसीलिए ना, क्योंकि हमने अपनी भौतिक जिंदगी की ख्वाहिशात को इतना बढ़ा दिया है कि उनको प्राप्त करने में ही हमारा पूरा जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि भगवान ने इस पृथ्वी को इतना संपन्न बनाया है कि जब मनुष्य यहाँ पर जन्म ले तो उसे उसकी भौतिक आवश्यकताएं बगैर किसी परिश्रम के प्राप्त हो जाए। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि चलाता है, बोला नहीं, भगवान ने यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ की है, मुझे थोड़ा इस तरह से अपनी प्लानिंग्स करनी चाहिए ताकि मैं और अधिक सुखी रहूं। वो कामस्तेन्द्रिय प्रीति के लिए नहीं करता, केवल कामनाओं को क्यों कर रहा है? ताकि मैं अपनी इंद्रिय प्रीति करता रहूं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करता हूं। इसलिए नहीं, लाभो जीवे तयावता तो सोचता है, जीने के लिए तो दो रोटी और एक कप दूध काफी है, तो उतना तो जीव को बगैर परिश्रम के भी मिल जाएगा। लेकिन जीव को क्योंकि बहुत ज्यादा लालच हो गई है ना, हृदय के अंदर बहुत ज्यादा हवस है ना, इसलिए वो और कमाना चाहता है और जमा करना चाहता है, और बड़ा घर चाहिए और बड़ी गाड़ी चाहिए, ऐसा करते 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 मर जाता है, लेकिन अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता और मनुष्य से कुत्ता बन जाता है। क्योंकि भगवान देखते हैं कि मनुष्य बनाया फिर भी विधि विधानों का पालन किया नहीं, शास्त्रों को पढ़ा नहीं, फिर क्या फायदा इसको मनुष्य देह देने का? ये तो अपना अपमान है मनुष्य देह का। मनुष्य रूपेण मृगार चरंती, मनुष्य का रूप दे दिया फिर भी मृगों की तरह, जानवरों की तरह तो आचरण करता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वसुंधरे, क्योंकि आप सारे धन की खान है, आपके पास हर एक वस्तु प्रचुर मात्रा में है, फिर भी इदम ममा चक्षु तवादि मूलम, आप बताइए आपके दुख का आदि मूल क्या है? आचक्षु, आप खुद बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो केवल इतना ही समझ पा रहा हूँ, कालेन वाते बलिना बलियसा, ये सब कुछ काल का प्रभाव है ना? ये काल ही ऐसा खराब काल आ गया है, ऐसा सत्यानाश समय आ गया है जिसके प्रभाव से विकर्षितासी का मतलब है कि आपका पूरा शरीर जो है वो दुर्बल हो गया है, आपकी सुंदरता चली गई। वैसे तो आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आज आपकी दुर्दशा का कारण है कालीन वाते बलिना बली यसा। हे माता, ये काल बहुत बलवान है, ये काल बलियों से भी बलवान है, क्योंकि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाला प्रबल काल है। और आप तो सुराजितम, जब आप अपनी वास्तविक स्थिति में होती हैं, तो सुर देवतागण भी आपकी वंदना करने के लिए आते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भगवान इस तरह धाम पर अवतरित होते हैं तो सारी पृथ्वी सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से समृद्ध हो जाती है, जिससे स्वर्ग के निवासी भी बड़े प्यार से इसकी पूजा करते हैं। सुरार्चितम, स्वर्ग के निवासी भी सोच रहे हैं कि हमारा स्वर्ग तो तुच्छ है, स्वर्ग तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, यहाँ पर तो भगवान कभी अपने शरण नहीं रखते। लेकिन ये पृथ्वी कितनी सौभाग्यवान, कितना पृथ्वी का सौभाग्य है, कितनी भगवान की पृथ्वी के ऊपर करुणा है। सारे देवी देवता आकर यहाँ पृथ्वी पर झाड़ू लगाना बैठ जाते हैं कि भगवान यहाँ से गुजरेंगे, पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी की प्रशंसा करने के लिए, पूजा करने के लिए आते हैं। सुरार्चितम किम हितम अम्ब सौभगम, अब आपका पूरा सौभाग्य कैसे रुद्ध हो गया, किसने किडनैप कर दिया, किसने आपके साथ ऐसा किया। मुझे तो केवल इतना ही समझ में आ रहा है कि ये काल का ही प्रभाव है। वास्तव में तो भीष्म पितामह भी यही बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को। 1.9.14 में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को समझाते हुए कहते हैं, सर्व काल कृतम मन्ये भवताम च यद्विप्रियम सपालो यद्वशे लोको वायुरिव खनावली सर्व काल कृतम मन्ये। युधिष्ठिर बेटा, ये जो कुछ हो रहा है आप यही मानो कि ये केवल काल की करतूत है। आपने तो बहुत जतन किए थे इस युद्ध को रोकने के लिए, परंतु ये काल ही है जो ये सारी करतूत कर रहा है। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति लोक लोक में मारा फिरता है। ये काल का ही प्रभाव है कि तुम जैसे धर्मात्मा को इतने दुख सहने पड़े, इतना कष्ट सहना पड़ा और तुम्हारे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, ये सब काल के कारण है। तो यहाँ पर भी बेल यही बोल रहे हैं कि काले नवा बलिनाम बलियसा, क्योंकि काल जो है वो बलवानों को भी जीत लेता है, इसे तुम्हारी दुर्दशा का कारण भी काल ही है। वास्तव में भक्तों, काल भगवान का ही स्वरूप है। इसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षयम कृत लोकान समा हर्तुमिह प्रवृत्तम। अर्जुन, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ पर समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। वास्तव में भक्तों, ये भगवान ही का स्वरूप है, तो भगवान ही इस काल को बदलते हैं। हम काल को नहीं बदल सकते, काल का परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर कलयुग आया है तो कलयुग अपने कारनामे में करेगा ही। ये जो सब हम पढ़ के आए हैं वो ही इस भौतिक जगत की अभी दुर्दशा होने वाली शास्त्र में पहले लिख कर दे दिया। हम कहाँ कहाँ जाके हर एक वस्तु को ठीक करने का प्रयास करेंगे, हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कभी मैकडोनल्ड्स में इतना गौ हत्या होता है, या फिर दूसरे दूसरे जगहों पे जो गौ का वध हो रहा है, मांसाहार हो रहा है, शराब पी रहे हैं, किस किस को रोकेंगे, कितना कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि करना बंद कर दें। जिनके पास समृद्धि है, जिनके पास सत्ता है, उनको करना चाहिए, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, एक पॉलिटिक्स थे, वो बोला कि अगर आपको राज्य दिया जाए तो तुम क्या करोगे स्वामी जी, आपको क्या क्या करोगे। तो बोला, मैं तो पूरी सृष्टि का नक्शा बदल दूंगा। बोला, कैसे? बोला, जिस तरह से सामने जो अमेरिकन खड़े थे ना, बोला, मैं ये इन वस्तुओं पर
प्रतिबिंब लगाकर इनको खत्म नहीं करूंगा, हृदय के अंदर जो इन वस्तुओं की वासना है ना उसको खत्म करूंगा। मैं ऐसा कैसे? बोला देखो कैसे किया मैंने, ये सब जो आपके सामने अंग्रेज हिप्पी लोग खड़े थे ना, सब इतने व्यसन करते थे, सब मांसाहार करते थे, सब जुआ खेलते थे, शराब पीते थे। आज इनके सामने अगर आप कुछ भी कर लो, चाहे कोई भी इनके सामने बड़े से बड़ा प्रलोभन ले लो, मगर ये कोई भी व्यसन नहीं करेंगे, कोई भी गंदी आदत, कोई भी ये अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि इनके हृदय में अब अपराध की जड़ नष्ट हो गई है। वास्तव में संपूर्ण सृष्टि इसीलिए दुखी है क्योंकि भगवत भावना की कमी है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, जिससे भी मिले, जिससे भी बात करें, उन्हें किसी न किसी तरह से भगवत भक्ति की ओर आकर्षित करें। किसी न किसी तरह से हम उस समय सफल होते हैं, गुरु महाराज उस समय हमसे प्रसन्न होते हैं जब हमारे कारण कोई व्यक्ति माला उठाता है, जब किसी को हम माला करने के लिए प्रेरित करते हैं, भगवान का नाम जप करने के लिए प्रेरित करते हैं, जब हम किसी को भगवान की कथा श्रवण कराते हैं, तो इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं और इसी से जीव के हृदय का दुर्गुण नाश होगा। चाहे आप कितने ही और तरीके आजमा लो, चाहे सरकार गवर्नमेंट कितनी बड़ी बड़ी जेलें बना दे, अपराधी समाप्त नहीं होंगे जब तक कि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, हृदय के अंदर भौतिक कामनाओं को पूरा करने की आसक्ति जो है ना वो तभी समाप्त हो सकती है जब हृदय के अंदर कृष्ण के प्रेम की बांसुरी बजती है। जब चेतो दर्पण मार्जन तभी होता है, हृदय के अंदर से गंदगी तभी समाप्त होती है जब हम भगवान का नाम जप करते हैं। तो इसलिए अब कलयुग तो आ गया है, तो कलयुग को हम बदल नहीं सकते, कलयुग के सारे लक्षण ऐसे ही होंगे। लेकिन यदि हम कलयुग के इन लक्षणों से बचना चाहते तो उसका एक ही उपाय है कि हम भगवान के संपर्क में रहें। क्योंकि ये कलयुग कैसे हो गया, ये पृथ्वी पर कलयुग कैसे आ गया, क्योंकि भगवान इस पृथ्वी से अपनी लीला समेट करके चले गए। लेकिन यदि भगवान को हम अपने हृदय से ना जाने दें, देखो ये कलयुग भले ही दोषों का भंडार है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, कलयुग जो है उसको महाराजा परीक्षित दंड देंगे और फिर उसको पुरस्कार भी देंगे। वो क्यों देंगे पुरस्कार, क्योंकि वो जान जाएंगे कलेर दोषे निधे राजन। निधे का मतलब होता है भंडार, सागर। कलयुग जो है वो अब जो दोष है ना, दोषों का भंडार है, दोषों का सागर है, अपराधों का एक बहुत विशाल सागर है। परंतु यस्ति एको महान गुण, इस कलयुग के अंदर एक इतना महान गुण है कि वो सारे अपराधों को, सारे दुर्गुणों को विनाश कर देता है। और वो क्या है, कीर्तना देव कृष्णस्य। यदि हम भगवान की नाम का कीर्तन करते हैं, यदि भगवान की कथाओं का कीर्तन करते हैं, यदि भगवान की कीर्ति का बखान करते हैं, तो कलयुग के दोष हम पर आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए यदि कलयुग से बचने का कोई उपाय है तो केवल इतना ही है कि हम प्रेम से भगवान के पवित्र नाम का जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहें। इससे कभी भी दूर नहीं रहना चाहिए। श्रवण और कीर्तन से जैसे ही हम दूर हो जाते हैं तो कलयुग का प्रभाव हम पर आक्रमण करने लगता है। इसलिए हम सबको अधिक से अधिक भगवान से जुड़ना है, भगवान की भक्ति से जुड़ना है, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ के रखना है। और जैसे हम भगवान के साथ जुड़ेंगे तो कलयुग हम पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। तो इतना तो कलयुग के विषय में बोला। धर्म रूपी बेल ने पृथ्वी से प्रश्न किए, अब कल से धरणियों वाच, पृथ्वी उत्तर देगी। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।